विज्ञानवादी का जह अभिप्राय मैंने मतलब है, विज्ञानवादी मैंने बौद्ध बुद्ध धर्म नु मनन वाले वो कह रहे हैं, की कह रहे हैं, विज्ञानवादी का जह अभिप्राय है जेवरी मैंने रस्सी, जेवरी देश में तथा अन्य देश में बुद्धि के बाहर कहूं सर्प है नहीं। वो कहिंदा ना ते रज्जू दे विच सर्प है ना किते और सर्प है इस संसार दे विच, समझ लेना ठीक से। वो कह रहे हैं विज्ञानवादी भी बुद्धि दे विच बुद्धि नु छड करके ना ते संसार दे विच किते सप है ते ना रस्सी दे विच ही सप है, ते फिर संसार दे विच सप नहीं है, रस्सी दे विच सप नहीं है, ते रस्सी दे विच प्रतीत क्यों हो रहा फिर? वो अपना जेड़ा मतलब है दसना चाह रहा कैसे प्रतीत हो रहा। देखो विज्ञानवादी का जो अभिप्राय है, जैसे जेवरी देश में तथा अन्य देश में, मैंने होर किते भी सारे संसार में अन्य देश में बुद्धि के बाहर कहूं सर्प नहीं है, वरना बुद्धि तो छड के किते सप नहीं है, ना रस्सी दे विच सप है ना पूरे विश्व दे विच किते सप है, जे सप है तो किते है बुद्धि च। वो कहना यह चाह रहा है भी अन्य किते भी संसार है नहीं है, बाहर जिहड़ा असीं देख रहे हैं यह संसार है नहीं है, तो किथे है संसार फिर? कहिंदा बुद्धि च संसार है, बाहर नहीं है संसार, ये संसार सारा है किथे है? बुद्धि च। तो प्रतीत कैसे हो रहा है बाहर, मतलब ये कैसे हो सकता है? बुद्धि च संसार हो, बुद्धि च सप हो, प्रतीत बाहर होवे, आंदा हो जाता ये कैसे हो जाता? आंदा तुसीं एक सड़क के किनारे शीशा लगा के बड़ा सारा बैठ जाना, ठीक है, बैठ गए तो फिर की होगा? इधर वाले लोग जेड़े आ तुरे आउंदे होणगे तो वह लगे गए जैसे ऐ नूं जाण डे, तो जेड़े ऐ नूं जांदे आ वह लगे गए इधर नूं जाण डे, तो शीशा कित्थे आ? जात जाते अपने रस्ते ठीक ही रहे हैं, तो प्रतीति कैसे हो रही है? उल्टी। आंदा बस ये भी यही हाल है, बुद्धि का भी यही हाल है, प्रतीति उल्टी हो रही है कहाँ इत्थे, प्रतीत कित्थे हो रहा है? बाहर। ये शीशे का दृष्टांत इन्होंने दिता है, इस नहीं होर शास्त्रां दे विच होर ग्रंथां दे विच उन्होंने ये शीशे का दृष्टांत दिता है, ठीक है ना। विज्ञानवादी का जो अभिप्राय है, जेवरी देश में तथा अन्य देश में बुद्धि के बाहर कहूं सर्प नहीं है, सारे पदार्थ बुद्धि से भिन्न नहीं है। वो कह रहा बुद्धि ही सारे पदार्थ, जितने भी संसार के पदार्थ है ना, वो बुद्धि से बाहर कोई पदार्थ नहीं है, बुद्धि ही उस पदार्थ के अरूप के विच परिणत माने परिवर्तन हो जाती है, बुद्धि ही सप के रूप के विच प्रतीत होगी, बुद्धि ही संसार दे विच रूप दे विच प्रतीत होगी, तो जो बुद्धि नष्ट हो गई तो सारा संसार ही नष्ट हो गया, तो फिर करना की आप? विज्ञानवादी कह रहा है ये जिहड़ा रस्सी दे विच सर्प है उन्हूं मारन की चेष्टा मत करो, जिहड़ा बाहर तुहानूं सर्प दिखाई दे रहा उहदे पिछे डांग लैके मत दौड़ो, तो की करो फिर? आंदा जिहड़ा तुहाडा इत्थे सप है उन्हूं कढो, जिहड़े तुहाडे इत्थे सप बड़िया है ना उन्हूं कढ दो, जिहड़ा बाहर सप जे तुसीं देख रहे ते उहदे मगर डंडा लैके लाठी लैके दौड़ रहे जे, वो तुहाडा इत्थे सप बड़िया है ना उन्हूं कढ दो, जिहड़ा बाहर सप जे तुसीं देख रहे ते उहदे मगर डंडा लैके लाठी लैके दौड़ रहे जे, वो तुहाडा भुलेखा है। तो सप कित्थे आ? कहिंदा सप इत्थे बड़िया तुहाडे, ये संसार है जिहड़ा बाहर संसार है तुहानूं दुख दे रहा है, ये मेरे धियां, मेरे पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये मेरी जायदाद जमीन जायदाद पदार्थ मेरे, ये घर मेरा, ये तुहानूं जिहड़ा दुख दे रहा है ना ये बाहर नहीं है, ये इत्थे बैठा है, इत्थों कढ दोगे तो बाहर वाला संसार अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। उहदे कहने का तात्पर्य इतना ही है, ठीक है। सारे पदार्थ बुद्धि से भिन्न नहीं, बुद्धि से अलग कोई पदार्थ नहीं, किंतु सर्व पदार्थ के आकार को बुद्धि ही धारे है, जितने पदार्थ है संसार दे सारे पदार्थों के रूप जेड़े बुद्धि ने धारण कर रखे, ठीक है। सो बुद्धि क्षणक विज्ञान रूप है, क्षण क्षण में नाश और उत्पत्ति को प्राप्त हुए है, जो विज्ञान साई जो विज्ञान सोई सर्वरूप प्रतीत है होवे है, जाकू आत्मख्याति कहे हैं, आत्मा कहिए क्षणक विज्ञान रूप बुद्धि ताकू सर्प रूप से ख्याति कहिए भान और कथन इसको कह दिया ख्याति। ख्याति का मतलब की है प्रतीत होना और कहना इनू कहते ख्याति। तो की यदा मतलब हो गया वो कह रहा है बुद्धि जो है क्षण क्षण में बदल रही है। कैसे कैसे बदल रही बुद्धि? बुद्धि तो एक ही है, बुद्धि तो एक है, बुद्धि की वृत्ति जी है वो बदल रही है। हुण बुद्धि मोबाइलाकार हो गई, ठीक है। तो ये जिन्ना चर ज्ञान रहेगा उन्ना चर दूसरा ज्ञान नहीं हो सकता। जदों ये ज्ञान नष्ट होया फिर दूसरा होगा, फिर इतों हट के बुद्धि इधर आ गई, इहदा ज्ञान हो गया। वो पहला ज्ञान नष्ट हो गया, दूसरा उत्पन्न हो गया। जदों इहदे तों तीसरे पदार्थ विच गई, इन्हां दोनों का नष्ट हो जाएगा, तीसरे का उत्पन्न हो जाएगा। इस वास्ते वो कह रहा बुद्धि जो है क्षणक क्षण क्षण में परिवर्तन वाली है। तो बुद्धि क्षण क्षण में परिवर्तन होंदी है, तो बुद्धि जिहड़े ज्ञान वह भी क्षण क्षण में परिवर्तन होंदे और उत्पन्न होंदे। यह किहदा मत है? विज्ञान क्षणक विज्ञानवादी का, बौद्ध का। अब आ गया अन्यथा ख्याति। अन्यथा मैंने अन्यथा ख्याति कौन मानता है? गौतम जी न्याय शास्त्र वाले अन्यथा ख्याति मानते। की कह रहे हैं? न्यायिक का और विशेषक का जह अभिप्राय है बांबी आदि स्थान में साचा सर्प है। बांबी मैंने की कहते वर्मी कह देने जिथे सर्प रेंदे है। हाँ जी हाँ जी हाँ, बस जो भी तुसी कह रहे हो ही अर्थ है बांबी मैंने वो चीज, ठीक है ना। गौतम जी तो और विशेषक मत वाले की कह रहे हैं? कह रहे हैं न्यायिक और विशेषक का जह अभिप्राय है बांबी आदि के स्थान में साचा सर्प है। देखो बौद्ध सच्चा सर्प बार भी नहीं मन रहे, वो संसार नू सच्चा नहीं मन रहे। वो कह रहे जे सच्ची है तो बुद्धि है, तो जो बुद्धि नष्ट हो जाती है सुषुप्ति दे विच ते संसार किथे जाता? फिर संसार भी नष्ट हो गया। क्यों? जेदे विच खाता लिखिया है ताड़ा, आपां किसी दा देना हो जा लेना हो तो आपां लिख दिन्ने कापी ते, ये लेना ये देना, तो जो कापी नष्ट हो गई तो लेना देना किथे गया? फिर तो लिखे सारे पदार्थ जेड़ा संसार किहदे विच लिखिया पिया है? बुद्धि दे विच पाप पुन साडे, तो जो बुद्धि नष्ट हो गई। करना यही कम है, पर यह जाना आप उत्थे ही है, बुद्धि नूं नष्ट करना है। पर यह जेडे बुद्ध सारे रस्ते है ना, कोई इधर नूं चल गया पटियाले, कोई इधरों दी आ गया, कोई उधरों दी आ गया, ये सारे पटियाले जाण नूं रस्ते अलग अलग है, जाना एक थाई है, ठीक है ना। यह समझ लेना। अब ये की कह रहे हैं? कह रहे ये सच्चा सप मन रहे हैं ताकू नेत्र से देखे हैं और नेत्र में दोष है ताके बलते सन्मुख समीप प्रतीत होवे है। यद्यपि साचा सर्प और नेत्र के मध्य भीत आदिकन अंतराय है तथापि दोष सहित नेत्र ते अंतराय सहित भी सर्प दिखे है। की कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सच्चा सर्प वर्मी दे विच है, बामी दे विच सच्चा सर्प है, उदे नाल नेत्र दा संबंध भी होया, पर नेत्र दे विच दोष है, इस वास्ते वो भुलेखा पै गया। किदों? रस्सी दे विच। रस्सी दे विच किदां भुलेखा पिया? पहला सच्चा सप देखिया, उहदे बुद्धि च संस्कार बने, फिर नेत्र दे विच दोष सी, रस्सी नूं देख के भी भुलेखा पै गया। ये सारे समझाउण दा मतलब की है? पहला ठीक प्रकार से असी रस्सी दे विच जैसे सर्प सानू प्रतीत हुंदा है ना, पहले सानू वो पता लगेगा कि कैसे प्रतीत हुंदा है। इस वास्ते ठीक से समझा रहे हैं। फिर आपां आत्मा दे विच देखांगे, आत्मा दे विच संसार जो सानू प्रतीत हो रहा ये कैसे हो रहा है, इस वास्ते इतने ज़्यादा जोर ला रहे हैं। क्यों? फिर अभी दृष्टांत है, फिर दृष्टांत आत्मा में आएंगे। ऐसे ही जैसे रस्सी दे विच सर्प झूठा प्रतीत हो रहा है, ऐसे ही आत्मा दे विच ये जो प्रपंच है ये भी झूठा ही प्रतीत हो रहा है, नहीं है, ठीक है ना। को ऐसी शंका करे हैं? देखो वो कह रहा है कोई ए, फिर की यद्यपि साचा सर्प और नेत्र के मध्य भीत आदिकन अंतराय है तथापि दोष सहित नेत्र ते अंतराय सहित भी सर्प दिखे। वह कह रहा सर्प देखिया उस बुद्धि दे विच बैठा है, जो फिर रस्सी नू देख करके सर्प का भुलेखा पिया, वह जिहड़ा पहला देखिया सर्प उही दिखाई दे रहा है, होर कोई नहीं है सर्प। वो कह रहा जिहड़ा पहला सर्प देखिया वह तो वामी बड़ी दूर है, उहदे विच ते मकान आदि बहुत आ गए, भीत मने कंधा आ गई, तो कंधा दे विचों दी सर्प कैसे दिखाई देता। वो कह रहा दोष दे नाल हो जाता, ऐसा दोष दे नाल समरथा घटती है कि वधदी है। नेत्र दे विच दोष होवे इहनू सगो कम दिसना चाहिए, आ दोष दे नाल दीवारां दे विचों दी भी देख लैंदा, इह कदी गल हो गई है ना। वो कह रहा है भीत आदि का अंतराय है, पर फिर भी दोष की बलते द्वारा दे विचों दी भी देख लैंदा। आंदा ये कैसे हो जाता, आ दृष्टांत देन लगा ये कैसे हो जाता। देखो कोई शंका करे हैं दोष ते समर्थ घटे हैं, दोष होवे ते समर्थ घटेगी, ठीक है, और बधे नहीं। जैसे जाठर अग्नि में पाचन समर्थ वात पित्त कफ दोष ते घटे है, तैसे नेत्र में भी तिमर आदि दोष ते समर्थ घटी चाहिए, और बामी आदिक स्थान में स्थित सर्प का दोष सहित नेत्र ते ज्ञान कहया, ता शुद्ध नेत्र से तो परदेश में स्थित का प्रत्यक्ष ज्ञान होवे नहीं, और दोष सहित होवे है, जानते दोष ते नेत्र का समर्थ अधिक होवे है, जय मानने में कोई दृष्टांत नहीं है। अंदा जे नेत्र दे विच दोष है ते कंधा दे विचों दी भी सर्प दिखाई दे रहा है, तो फिर जिहड़े बाकी दूर पदार्थ पाए वह भी दिसने चाहिए, सर्प ही क्यों खाली दिखाई दे रहा है। साडा कोई पैरा बाहर विदेश में गया सानू इत्थों बैठे दिस पे, वो नेत्र दे विच दोष है। अंदा ये गल नहीं है, होर गल इहदा मतलब सी है, मतलब समझो जैसे वो दृष्टांत दे रहा है कैसे दोष दे नाल समर्थ वध जांदी है। सुनो सो शंका बने नहीं काहे ते किसी को पित्त दोष ते ऐसा रोग होवे है जो चतुर्गुणा भोजन किए ते भी तृप्त होवे नहीं। मतलब कदी कदी पेट दे विच ऐसा रोग हो जाता वो जिन्ना चार रोटियां खानियां तो 16 खा लेगा फिर भी उन्हों संतुष्टि नहीं होगी, क्यों, पेट दे विच को रोग हो गया, तो रोग दे नाल समर्था घटी के वधी, यही वो कहना चाह रहा है। मतलब कदी कदी ऐसे भी हो जाता है रोग होवे उहदे नाल समर्था घटती नहीं सगो वध जाती है। वो दृष्टांत दे रहा है जैसे पेट दे विच कोई रोग होवे तो जिहड़ियां चार प्रसादे छकदा 16-20 छक जाएगा, समर्था बढ़ गई ना। आंदा ऐसे ही नेत्र दा भी हो गया, नेत्र दे विच रोग है तो वह दोष है, तो उहदे नाल की हो नेत्र दी समर्था बढ़ गई, इस वास्ते दीवारां दे विचों दी भी सर्प दिखाई दे गया, ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। जैसे पित्त दोष ते जाठर अग्नि में पाचन समर्थ बधे है, तैसे नेत्र में भी तिमर आदि दोष ते प्रदेश में स्थित सर्प के प्रत्यक्ष ज्ञान करने की समर्थ बधे है। इस रीति से बाम्बी आदि के देश में स्थित सर्प का अन्यथा कहिए और प्रकार से सन्मुख जेवरी देश में ख्याति कहिए भान और कथन, सो अन्यथा ख्याति कहिए, अन्यथा ख्याति मने अन्य प्रकार से दूसरे प्रकार से देखा तो कितने बामी में और प्रतीत हो रहा कहाँ रस्सी में, दूसरे देश में अन्य देश में प्रतीत हो रहा, इन्हू कहते अन्यथा ख्याति, ये गौतम वाले ऐसे मानते। अचिंतामणि न्यायक दो मत है, एक तो न्यायक है एक है क्या है नब न्यायक, नवे न्यायक जो बने हैं ना, वो कह रहे चिंतामणि जो ग्रंथ है ये चिंतामणि वाले की कह रहे हैं, चिंतामणिकार का जो है मत है, चिंतामणिकार एक ग्रंथ है चिंतामणि जिन्होंने लिखा है ना उन्होंने मत सुन लो। वो कहते दोष सहित नेत्र से बाम्बी में स्थित सर्प का ज्ञान होवे तो बीच के और पदार्थ का ज्ञान भी हुआ चाहिए। उन्हें बाम्बी दे विच सर्प देखिया जिते वर्मी है, तुसी हुण इत्थे बैठे जे, तो जे इतों सानू वह सर्प दिखाई दे रहा है तो बिच वाले जोड़े पदार्थ बाकी वह क्यों नहीं दिखाई दे रहे, खाली सीधा सर्प ते जाके क्यों पै रहा भी, बाकी किन्ने पदार्थ रस्ते दे विच, वो सारे दा ज्ञान होना चाहिए। चिंतामणि कार ऐसे कह रहे हैं, ठीक है ना। जाते देश में स्थित, जाते प्रदेश में स्थित वस्तु का नेत्र से ज्ञान होवे नहीं, किंतु दोष सहित नेत्र ते जेवरी का निज रूप ते भान होवे नहीं, सर्प रूप से भान होवे है। जाते जेवरी का ही अन्यथा कहिए और प्रकार से सर्प रूप ते जो ख्याति कहिए भान, और कथन सो अन्यथा ख्याति कहिए। इसने ऐसे प्रकार कहती, ठीक है। अब अख्याति वाले की कह रहे हैं, ख्याति वाले का सुन लो। और अख्यातिवादी का जाय अभिप्राय है, अभिप्राय में मतलब जो असत्य की प्रतीति हो, वो कह रहे हैं ना असत्य भी है ही नहीं, सर्प है ही नहीं कितने सारे संसार विच, तो प्रतीत हो रहा है। वो कह रहे ऐसे फिर ताड़े कहने का मतलब असत्य, असत की प्रतीति होंगी कभी, जिहड़ी वस्तु है ही नहीं उहदी प्रतीति हो जाए, ये तो नहीं हो सकता। जे ऐसे होने लगे वे तो फिर उहदा उहदे भी दृष्टांत सुन लो। जो असत की प्रतीति होवे तो बंद्या पुत्र और शश श्रृंग की प्रतीति हुई चाहिए। वह बांझ का पुत्र नहीं है, वह पुत्र की भी प्रतीति होनी चाहिए। वह सहद सिंह नहीं है तो वह सिंह भी दिखाई देने चाहिए, वह भी असत है ना। तो जैसे सारे संसार दे विच सप असत है, ऐसे सहद सिंह भी तो असत ही है, तो भी प्रतीत होने चाहिए, पर प्रतीत नहीं होंगे, ठीक है ना। हुए चाहिए जाते असत ख्याति असंगत है, इसलिए उन्हों कोई मानता ही नहीं, ठीक है। अब क्षणक विज्ञानवादी का ही आकार सर्प आदि को होवे है, तो क्षण मात्र से अधिक काल स्थित प्रतीत नहीं हुआ चाहिए। अक्षणक विज्ञानवादी क्या मान रहा सी, क्षण क्षण बुद्धि बदल रही है, नष्ट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, उनका फिर एक क्षण ही सर्प दिखाई देना चाहिए, दूसरे क्षण वो नष्ट हो गया दूसरा ही को दिखाई दे दे। बुद्धि सुनी जाओ, इन्होंने बुद्धि कितनी है ग्रंथकारां दी, कैसे कैसे हैं है? भाई पूरा डिस्कस करके निर्णय तक ताई पहुंचणगे, नहीं तो दूसरा कोई कह देगा लै साडा मत तो असी एवं मानते सा, वो साडा मत उन्हें विच नहीं रखिया, इहदा मतलब ये है साडी अपेक्षा करती, जां साडा मत सच सी उन्हूं प्रगट नहीं करना चाहुंदे। इसलिए किसी का खंडन करना होवे ना तो पहला वो ग्रंथ ठीक से पढ़ना पवेगा, ठीक प्रकार से पढ़ करके समझ करके तब खंडन करोगे। ये थोड़ी एक पंक्ति पढ़ ली तो खंडन करता, बैठ रहे हो बक ध्यान लगाए, गंगा के किनारे को ऐसे बैठे पंजाबी गए इशनान करन, मैं खड़ा ही सी, सच्ची गल है, मैं भी गंगा के किनारे शाम को घूम रहा सी, तो वो जाके कर लावे बाबा जी को ऐसे बैठे दे, ये है बगला समाधि, बैठ रहे हो बक ध्यान लगाए, एक पंक्ति पढ़ ली बस वो कटा था। इसलिए जे शास्त्र का खंडन करना हो पहले उदा बैठ के तो देखो वो बैठा की कर रहा है, खंडन करन दा की है। खंडन करना हो पहले पूरे ग्रंथ जेड़ा खंडन करना ठीक से पता हो ताई खंडन करांगे। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने खंडन तो किया बुद्धों का, पर उन्हें ठीक प्रकार से उन्होंने ग्रंथ पढ़े, जिथे कमजोरी सी उहदा खंडन किया, ऐसे नहीं खंडन किया ये ग्रंथ बेकार है, क्योंकि बुद्ध जो थे बुद्ध अवतार दसा अवतारों के आते आ, भगवान विष्णु के दसा अवतारों के बुद्ध अवतार भी आते आ, तो बुद्ध अवतार इस वास्ते हुए सी असुरां भ्रष्ट करने वास्ते, बलि प्रथा ज़्यादा चल पई सी, तो बलि प्रथा नष्ट करने वास्ते खत्म करने वास्ते वह बुद्ध का अवतार होया सी, जीव हत्या ज़्यादा होने लग गई, फिर उन्हें कहा अहिंसा परमो धर्म छड़ो, ये की कर रहे थी भाव कर रहे थे, अ जिन्हें भी कुछ खाना होंदा सी मास ला आपां ते जग करांगे बलि दे दांगे ते खा लिया, ये मतलब समझने चाहिए वो अवतार क्यों हुए की उन्हां दा अभिप्राय सी। चलो आपां इस तरफ ना ज़्यादा जाइए, अपने जिहड़ा साडा है ना उत्थे आउंदे आ। अब कह रहा क्षणक विज्ञानवादी का ही आकार, क्षणक विज्ञान का ही आकार सर्प आदिक होवे तो क्षण मात्र से अधिक काल स्थिर प्रतीत नहीं हुई चाहिए। कहना क्षणक विज्ञानवादी ने अब खंडन कर रहे उन्होंने अख्याति का कर दिता, ਵੀ ਅਸੱਤ ਖਿਆਤੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੱਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਸ਼ਸ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ। ਇੱਕ ਮਤ ਖੰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਛਣਕ ਵਿਗਿਆਨਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਛਣ ਛਣ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀ ਬਦਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਛਣ ਛਣ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀ ਬਦਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛਣ ਸਰਪ ਦਿਖਾਈ ਦੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਛਣ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਬੁੱਧੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹ ਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਸੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਤਮ ਖਿਆਤੀ ਵੀ ਅਸੰਗਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਅਨਥਾ ਖਿਆਤੀ ਕੀ ਪ੍ਰਥਮ ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਮਣੀ ਕਾਰ ਕੇ ਮਤ ਸੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਆਂ ਮਤ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੌਤਮ ਜੀ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਮਣੀਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕਰਤਾ, ਅਬ ਚਿੰਤਾ ਮਣੀਕਾਰ ਬਚਿਆ ਉਹਦਾ ਵਿਦਾਂਤੀ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਦੇਖੋ, ਅਨਥਾ ਖਿਆਤੀ ਕੀ ਪ੍ਰਥਮ ਰੀਤੀ ਮਣੇ ਗੌਤਮ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ, ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਮਣੀਕਾਰ ਕੇ ਮਤ ਸੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੈਸੇ ਚਿੰਤਾ ਮਣੀਕਾਰ ਕੀ ਰੀਤੀ ਸੇ ਵੀ ਅਨਥਾ ਖਿਆਤੀ ਮਤ ਅਸੰਗਤ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਮਣੀਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿ ਉਹ ਕਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਤੇ ਗੇ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਵਸਤੂ ਹੋਊਗੀ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਪਾਸਨਾ ਮੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ ਐਸੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਕਰੋ, ਭਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਬੈਠ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਭਗਤ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਵਸਤੂ ਹੋਗੀ, ਆਪ ਇਹ ਵਸਤੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਆਪ ਬੱਕਰਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਕੁੱਕੜ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਈ ਅਤੇ ਨੇਤਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂ? ਵਸਤੂ ਦੇ ਜੈਸੀ ਵਸਤੂ ਹੋ ਗੇ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਜੈਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ। ਚੌਥ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬਈ, ਅੱਜ ਚੌਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੰਦ ਦਾ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਵਸਤੂ ਹੋਊਗੀ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਪਾਸਨਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੇ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਵਸਤੂ ਹੋਊ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓਗੇ? ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਸਰਪ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਰੱਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਪਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਗੇ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਗੇ ਰੱਜੂ ਔਰ ਸਰਪ ਕਾ ਗਿਆਨ, ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਗੇ ਰੱਜੂ ਹੈ ਉਸ ਗਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੱਪ ਦਾ, ਇਹ ਕੈਸੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਹੀ? ਜੈਸੀ ਵਸਤੂ ਐਸਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਜਹ ਰੀਤੀ ਮਾਨਣੀ ਯੋਗ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਰੱਜੂ ਮੇ ਸਰਪ ਬਰਮ ਔਰ ਤਹਾਂ ਰੱਜੂ ਸੇ ਨੇਤਰ ਕਾ ਆਪਣੀ ਵ੍ਰਿੱਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਕੇ ਰੱਜੂ ਕਾ ਇਦਮ ਰੂਪ ਤੇ ਸਮਾਨੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਹੈ ਔਰ ਸਰਪ ਕੀ ਸਿਮਰਤੀ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਜਹ ਸਰਪ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਦੋ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਆਹ ਦੋ ਗਿਆਨ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕੌਣ? ਚਿੰਤਾ ਮਣੀਕਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ, ਦੋ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰੱਜੂ ਦਾ ਇਦਮ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਪ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਰਪ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਰਪ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪਕ ਲੈ ਕੇ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਭੁਲੇਖਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੋ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸਿਮਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਰੱਜੂ ਕਾ ਸਮਾਨੇ, ਜਹ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਰੱਜੂ ਕਾ ਸਮਾਨੇ ਪ੍ਰਤਿਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਸਰਪ ਹੈ, ਜਹ ਸਰਪ ਹੈ ਐਸਾ ਸਰਪ ਕਾ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਰੂਪ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਤੀ ਸੇ ਜਹ ਸਰਪ ਹੈ ਇਹ ਇਹਾਂ ਦੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਭੈ ਦੋਸ਼ ਪਰਮਾਤਾ ਮੇਂ ਔਰ ਤਿਮਰ ਦੋਸ਼ ਪਰਮਾਣ ਮੇਂ ਤਾਂ ਕੇ ਬਲ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਕੋ ਐਸਾ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੋ ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਯਦਪਿ ਜਹ ਅੰਸ਼ ਰੱਜੂ ਕਾ ਸਮਾਨੇ ਗਿਆਨ ਯਥਾਰਥ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਵ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਪ ਕਾ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਯਥਾਰਥ ਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੋ ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਮੇਂ ਰੱਜੂ ਕਾ ਸਮਾਨੇ ਪ੍ਰਤਿਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਸਰਪ ਕਾ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਹ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਤਿਸ ਦੋ ਗਿਆਨ ਕੇ ਅਵਿਵੇਕ ਕੋ ਹੀ ਸੰਖਯ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਮਾਤਮੇ ਭਰਮ ਕਹੇ ਹੈ। ਜਹ ਰੀਤੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਥਲ ਮੇਂ ਜਾਣਨੀ, ਜਾਂ ਰੀਤੀ ਮੇਂ ਰੱਜੂ ਆਦਿਕਨ ਮੇਂ ਸਰਪ ਆਦਿਕ ਭਰਮ ਜਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤਹਾਂ ਚਾਰ ਮਤ ਸੁਣ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮੇਂ ਨੀਕਾ ਮਤ ਹੋਏ ਸੋਈ ਕਹੋ। ਨੀਕਾ ਮੈਨੇ ਚੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸੋਈ ਕਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੂ ਮੈਂ ਮਾਨੂੰ। ਜਹ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ, ਅਤੇ ਐਸੇ ਸਰਪ ਰੱਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਤ ਦੱਸਤੇ, ਚਾਰ ਮਤ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕੈਸੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਅਖਿਆਤੀ ਮਤ ਮੰਡਨ। ਦੇਖੋ ਅਖਿਆਤੀ ਅਨਰਵਚਨੀ ਲੱਖ ਪੰਚਨ ਤਿੰਨ ਤੇ ਔਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਖਿਆਤੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਆਤੀ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਨਰਵਚਨੀ ਖਿਆਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਵੀਂ ਤਿੰਨ ਤੇ ਔਰ ਹੀ ਹੈ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਚਾਰ ਮਤ ਤੂੰ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਮਤ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਭਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਰਵਚਨੀ ਖਿਆਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨ, ਉਹ ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ। ਯੁਕਤੀਹੀਨ ਮਤ ਚਾਰ ਜਹਿ ਮਾਨੋ ਭਰਮ ਕੀ ਠੌਰ, ਇਹ ਯੁਕਤੀਹੀਨ ਹੈ ਚਾਰੇ ਮਤ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਮੰਨ। ਅਤੇ ਮੰਨ ਕਿਹਨੂੰ, ਜੋ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਅਨਰਵਚਨੀ ਖਿਆਤੀ। ਅਨਰਵਚਨੀ ਮੈਣੀ, ਅਨਵਚਨੀ, ਅਨਰਵਚਨੀ ਦਾ ਕਿਆ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੋਇਆ, ਅਨਰਵਚਨੀ ਜੋ ਵਚਨ ਸੇ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਰਵਚਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਐਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕੈਸੇ ਬਈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕੈਸੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ, ਹੱਥਾਂ ਬੈਰ ਪੈਰਾਂ ਬਾਜੋ ਚੱਲਣਾ ਬਿਨ ਹੱਥੀ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਐਸਾ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਰਵਚਨੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਕੋਈ, ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਕੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਤਮਾ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋ ਕੰਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋ ਅੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਕੋ ਪੈਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੂੰ ਕੈਸੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੈਸੇ ਸੁਣੇਗਾ। ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਗੈਰ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਜੈਸੇ ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨ ਸੀ ਜਾਗਦਾ ਉਦੋਂ? ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਲੈ ਸੀ, ਕਰਨ ਮੈਨੇ ਸਾਧਨ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਾਰੇ ਲੈ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਪਰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਸੇ ਸੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕੰਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੈ ਬਗੈਰ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਬਗੈਰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਬਗੈਰ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਕਸ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਭਾਗਵਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੋ ਪਕਸ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੀਵ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਸਫੁਰਤੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀਵ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਹਮ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਨਿਕਲੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਪਈ, ਅਤੇ ਸੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਆ, ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੱਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸੱਤ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਐਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰਹਾ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਰਹਾ, ਅਤੇ ਸੱਤ ਕੀ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਸੂਰਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਗੜਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਬ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਭਰਮ ਕੀ ਠੌਰ, ਜੁਗਤੀਹੀਨ ਮਤ ਚਾਰ ਜੇ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਮਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਜੁਗਤੀਹੀਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਂਚਵਾਂ ਮਤ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਔਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦਾ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਮਝ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਹੇ ਸ਼ਿਸ਼, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਖਿਆਤੀ ਅਤੇ ਔਰ ਹੀ ਭਰਮ ਕੀ ਠੌਰ, ਅਨਰਵਚਨੀ ਖਿਆਤੀ ਪੰਚਮ ਲੱਖ, ਔਰ ਅਸਤ ਖਿਆਤੀ ਆਤਮ ਖਿਆਤੀ ਅਨਥਾ ਖਿਆਤੀ ਔਰ ਅਖਿਆਤੀ, ਜੇ ਚਾਰ ਮਤ ਜੁਗਤੀਹੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਉੱਤਰ ਉੱਤਰ ਮਤ ਨਿਰੂਪਣ ਮੇਂ ਤੀਨ ਮਤ ਅਸੰਗਤ ਕਹੇ, ਤੈਸੇ ਅਖਿਆਤੀ ਮਤ ਵੀ ਅਸੰਗਤ ਹੈ ਕਾਹੇ ਤੇ। ਜੈ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਤ ਕੱਟਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੱਟਤਾ, ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੱਟਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਾ ਇੱਕ। ਐਸੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸੂਤਰ ਜਦੋਂ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ।